शक्तिमान।
हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुख में बने तारा जहां, तारा जहां।
नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में। कहते हैं कि ये प्रकृति और पुरुष का खेल है और दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संबंध टूट चुका है और आज समय आ चुका है कि उस संबंध को एक बार फिर से जोड़ा जाए और उसको एक बेहतर, मजबूत बनाया जाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, हमारे आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी प्रकृति के बारे में, कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, कैसे कैसे उनमें डिसहार्मनी आ चुकी है, और हमने डिजास्टर्स की भी बात की थी। फ्लड्स बढ़ रहे हैं जो पहले कभी इतना नहीं होता था, सुनामी आती है, साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं। हम हिस्ट्री भी देखते हैं, पहले इनका रेशियो इतना नहीं था, लेकिन अब इतना फ्रीक्वेंट हो गया है। ये हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि आज उस कंट्री में ऐसा हो गया, आज उस कंट्री में ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो गया, प्राकृतिक आपदाएं आ गई। तो क्या कारण है कि डे बाय डे ये रेशियो इंक्रीज कर रही है?
जैसा कि पिछले एपिसोड में भी डिस्कशन कुछ हुआ था कि ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति का और बाहर की प्रकृति, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, फिजिकल सेंस में डेवलपमेंट होती जा रही है, देखा गया है कि आंतरिक जो उसके गुण है, आंतरिक शक्तियां, उनका ह्रास होता जा रहा है, कम होती जा रही है, दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो इसका मुख्य कारण यह है कि हर चीज की जड़ जो है वो मनुष्य के आंतरिक इंटरनल वीकनेस या पांच विकार ये है
जी।
इसका ये मतलब नहीं बाहरी कारण नहीं है, बाहरी कारण तो है ही, और जो हम सब जानते हैं, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है आदि आदि, वो तो कारण मेन है ही है, लेकिन उनकी जड़ के अंदर वास्तव में मनुष्य के ये आंतरिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना। मुझे याद आ रहा है एक बात कि हमारा जब ये पर्यावरण जागृति अभियान निकाल रहे थे हम लोग भोपाल से चेन्नई तक
जी,
तो कुछ जगह हमें इंडस्ट्रियलिस्ट वो मिले जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज जो रन कर रहे थे, तो हम लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई अगर आप ऑफ द मार्क कहें बात, ये मैं 92 आदि की बात बता रहा हूं, 92-95 तक की, तो हमारे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स तो हैं लेकिन हम उन्हें रन नहीं करते रेगुलर वे में। क्यों? क्योंकि उसमें काफी खर्चा होता है बहुत, लेकिन बनाना हमारा मजबूरी है क्योंकि हमने बना के रखे हुए हैं कि भाई सरकार का भी ये नियम है आदि आदि। तो देखिए इसके अंदर मनुष्य का कि कुछ पैसे बचाने के लिए वो कितने हजारों लाखों मनुष्यों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये लोग प्रवृत्ति आ गई। मैं ONGC में था, मैंने देखा है कि एक भी ऑयल वेल को कभी आग लग जाती है तो केवल तेल का ही नुकसान नहीं होता लेकिन पर्यावरण का अनगिनत नुकसान हो जाता है। और जो समुद्र में से हम तेल निकालते हैं, और कहीं भी दो कंट्रीज का जब भी झगड़ा होता है, मुझे याद आ रहा है इराक का कुवैत का जब
वार हुई थी
तो उसमें इराक ने कुवैत के कुछ तेल के कुओं को नष्ट किया। उस समय ऐसा देखने में आता था कि दोपहर के 12 बजे
अंधेरा होता,
बिल्कुल मिडनाइट जैसा होता था, इतना तेल कुएं से धुआं निकला कि चारों तरफ हो रहा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान किया समुद्र के ऊपर जो तेल वो फैल गया, उसमें हजारों लाखों जो समुद्री जीव थे उनका जीवन नष्ट हो गया। तो देखिए ये भी प्रवृत्ति, ईगो, मेरा राज्य,
बिल्कुल आपस की जो इविल्स हैं वो उसकी वजह से हमने नेचर को भी स्पॉइल कर दिया।
बिल्कुल, लेकिन इसकी रूट में यही है कि मैं बड़ा देश हूँ, इराक पावरफुल, छोटा है उसे मेरी बात माननी चाहिए, वो आ गया। तो अब देखा जाए तो बाहर के कॉज हम जनरेट करते हैं, लेकिन ये मनुष्य का मेंटल पॉल्यूशन है,
बिल्कुल
मानसिक प्रदूषण। और इस कारण से ही, और इसलिए भारतीय संस्कृति ने बड़े अच्छे दो सिद्धांत दिए हैं शुरू से ही, एक है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव,
बिल्कुल
है। और ये सभी के लिए वैलिड है, हमारे परिवार में भी और बाहरी देश में भी, समाज में भी। परिवार में अक्सर सास बहू का या भाई भाई का या बाप बेटे का झगड़ा सुनने में आता है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वो मेरी बात माने, मैं अनुभवी हूँ, बड़ा हूँ, मेरी बात वो सुने
जी।
तो जहां ये फैक्टर आ गया, जियो और जीने दो का सिद्धांत चला गया। तो इस कारण से देखा जाए ये एक सिविलियन सिद्धांत है, जियो और जीने दो, और एक सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट को ही जीने का अधिकार है। तो ये तो एक्चुअली देखा जाए तो जंगल रूल है, क्योंकि जंगल में ना बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेगा, छोटा उससे छोटे को, ये और शेर जैसे जंगल कर रहा उसे ही जीने का अधिकार है। तो हम चाहते हैं कि जैसे जंगल रूल की स्थापना, इनडायरेक्टली चाहते नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, किसी जगह अच्छा इंडस्ट्रीज में जहां क्वालिटी कंट्रोल वगैरह है, फिटेस्ट जो ज्यादा क्वालिटी, लेकिन ये हम सबकी नेचर में आ गया। तो फैमिली में भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है अगर, तो जिसका वर्चस्व है
वही रूल करेगा, वही राजा है।
हाँ, इसी तरह समाज में भी। तो एक बात यह है कि जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, उस कारण से ही एक ये बात जो पुरुष और प्रकृति का खेल आपने बताया ना, बहुत अच्छा है। पुरुष यानी मनुष्य और प्रकृति माने पांच तत्व, और इसे दो सेंस में ले सकते हैं। एक तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष वास्तव में आत्मा, आत्मा पुरुष है और प्रकृति पांच तत्वों से बना ये शरीर है
जी।
ये तो है लिमिटेड सेंस में, और अनलिमिटेड सेंस में पुरुष और प्रकृति का खेल ये वास्ट पांच तत्व देहद में फैले हुए हैं, ये प्रकृति और वो परम पुरुष परमात्मा उसका। तो ये सारा खेल जो है ना पुरुष और प्रकृति का वास्तव में है, लेकिन इस खेल को हम किस रीति से खेल रहे हैं वो हमारे पर निर्भर है।
ये तो बहुत आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये प्रकृति और पुरुष का खेल है, यानी कि सबसे नियरेस्ट प्रकृति ये हो गई,
राइट राइट,
सबसे जो मेरे निकट प्रकृति है वो मेरा अपना शरीर हो गया।
बिल्कुल।
और कमाल की बात ये है, हम इस प्रकृति का भी ध्यान नहीं रखते, कई बार हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इसको ध्यान देना ही छोड़ देते हैं।
तो इस कारण से एक तो ये, और आपने जैसे बताया पुरुष और प्रकृति, एक तो ये है, तो जैसे हम इस पुरुष का, इस प्रकृति का भी ख्याल करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज भी अगर हम बाहर की प्रकृति का भी ख्याल करें ना, इसको जैसे हम नहलाया धुलाया साफ किया, सब भोजन दिया, सब
जी,
दिया,
इसका बहुत ध्यान रखते हैं,
बहुत ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बाहरी ध्यान तो रखा, लेकिन पुरुष की भी को भी नहलाए धुलाए, वो उसका क्या, बाहर का गंदगी मैल पसीना धोया, लेकिन अंदर का मैल ईर्ष्या द्वेष घृणा वो सब तो संचय होता चला गया ना, वो अगर इकट्ठा करते गए तो क्या होगा उसका रिजल्ट। तो आवश्यकता यह कि बाहर की सफाई के साथ साथ ये आंतरिक सफाई भी हो। बाहर जैसे भोजन देते हैं, इसको भी शुद्ध भोजन दे जो भी इसके लिए उपयुक्त है। बाहर को जैसे आराम देते हैं, निंद्रा देते हैं, इसी तरह इसको भी हम आराम दें, मौन का आराम, एकांत का आराम देंगे ये सब, तो जैसे शरीर स्वस्थ रहेगा ऐसे हमारी अगर आत्मा, सोल, कॉन्शियसनेस, लाइफ वो स्वस्थ रहेगी ना, तो जीवन बड़ा बैलेंस्ड चलेगा, और बाहर की प्रकृति भी उसके ऊपर, देयर इज इंटरनल कनेक्शन।
हाँ, पहले हम कहते थे ना कि हमारा जो भारत था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में चलती थी, लेकिन आजकल वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर से मुझे एक बात याद आती है, हम क्योंकि डिजास्टर की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं और जो कंपनीज है उसमें क्या होता है, कभी भी डिजास्टर्स हो सकते हैं, एनी टाइम हो सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं कि जब ये हो जाए, ये सिचुएशन हो, तो आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लेकिन सिचुएशन उस टाइम जब प्रैक्टिकली वो डिजास्टर हो जाती है तो उल्टा हो जाता है, उस टाइम और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं,
बिल्कुल सही बात है,
इम्बैलेंस हो जाता है स्टेट ऑफ माइंड। तो ऐसे में आप क्या गाइडलाइंस देंगे कि ऐसे में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने आ गई तो कैसे मैं अपने आप को स्टेबल रख सकता हूँ, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है।
राइट, आपका प्रश्न सुन के मुझे एक बात याद आ गई
जी,
कि विज्ञान भवन दिल्ली में है, तो वहाँ 2004 में जब ये सुनामी आई थी उस समय हमारी वहां कॉन्फ्रेंस होने वाली थी अगले दिन ही, और ये दिसंबर में लगभग शायद 25-26 दिसंबर को यह हुआ, सुनामी आई, और 27 दिसंबर को हमारी कॉन्फ्रेंस। उस समय एक बात पर खास स्ट्रेस दिया गया कि हम आईटी वाले, भारत आईटी देशों में प्रमुख है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन उस समय आपने बहुत सही कहा कि क्या होगा जब डिजास्टर हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी, तो सबसे पहली कैजुअलिटी तो ये टावर ही होता है, कम्युनिकेशन टावर। तो आवश्यकता क्या है कि वो हो, उसके साथ साथ हमारा ये मेंटल कम्युनिकेशन, इसको हम इतना स्ट्रांग करें जिसे पुराने भारत में टेलीपैथी भी कहा जाता था। तो ये हमारा, एंड दिस इज द मेडिटेशन जो हमारा हम लोग ये इसको प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे ये बताते बड़ा गर्व होता है कितने इंडियन डिसास्टर्स में, कच्छ भुज का हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, सुनामी हुई, ऐसे समय में ब्रह्मा कुमारीज के जो स्टूडेंट्स थे, ऐसे डिसास्टर में उन्होंने ये मेंटल कम्युनिकेशन का ये इस्तेमाल किया, दे गेट द करेक्ट, मतलब जो कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम, और उसके आधार पर उन्होंने जो भी स्टेप लिए वो बहुत सेफ स्टेप थे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली उनके कदम उधर बढ़े जहां सेफ्टी है। ये एक सटल चीज है, सूक्ष्म चीज है, लेकिन ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, और ये टेलीपैथी यानी कि मेंटल कम्युनिकेशन जितना हमारा स्ट्रांग होगा तो इट विल सप्लीमेंट द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम। आवश्यकता इस बात की है कि हम फिजिकल के साथ साथ जो सटल कॉन्शियसनेस है उसको भी स्ट्रांग करें, क्योंकि जब भी कोई ट्रेजेडी आती है ना, ये डिजास्टर होता है, तो वो तो दो चार दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में पूरा होकर चला जाता
जी।
है, लेकिन उसका इफेक्ट वो जीवन भर के लिए छोड़ जाता है।
बिल्कुल।
तो उसको हम कैसे फेस करें, उसके लिए हमारा माइंड और हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए।
आपने टेलीपैथी की बात की तो मुझे याद आया, मैंने कहीं पढ़ा था कि जितना हमारा माइंड शुद्ध होता है उतना ही आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो उसके लिए क्या मुझे अपनाना चाहिए, क्या ऐसी मेथड हैं, टेक्निक्स हैं जो मैं अपना टेलीपैथी सिस्टम स्ट्रांग कर सकूं?
जैसे बाहर भी ना जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। बाहर जहां रिले हो रहा है टीवी का, रेडियो का, जो अगर हमारे अपने रेडियो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं होगी तो बाहर जितना भी बढ़िया रिले होगा वी विल नॉट बी एबल
टू कैच, नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए जैसे वो मैच करते हैं, ऐसे ही ईश्वर जब हमारा पिता है और वो टाइम पर हमें सूचना देता है। मुझे याद है जब हम भी इंजीनियरिंग कर रहे थे वहां पर धनबाद में, तो ये हमारा सब्जेक्ट था, मैंने जियो फिजिक्स में उसमें करा है वहां, तो उसके अंदर ये मेट्रोलॉजी और अर्थक्वेक और डिजास्टर ये सब चीजें आती हैं। तो उस समय भी पढ़ाया गया था और अभी तक भी वो है कि जितने रेप्टाइल्स होते हैं, सांप हैं, छिपकली हैं, जमीन में रहने वाले, वो उनका दे गेट द इंडिकेशन और तुरंत ही वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और वो बच जाते हैं।
पढ़ते भी थे
और सुनामी में देखा गया कि जितने भी ये पशु वगैरह और जो थे ना, वो सब खूंटे तोड़ के और उसे भाग गए, चले गए। इसका इंटरप्रिटेशन ये दिया जाता है कि क्यों, बिकॉज दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर, प्रकृति के साथ उनका हार्मनी ज्यादा है। आज मनुष्य का एडवांसमेंट डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन प्रकृति के साथ उसकी डिसहार्मनी बढ़ती जा रही है। इसीलिए वी आर नॉट एबल टू गेट द सिग्नल्स ऑफ द नेचर। तो नेचर का जैसे ही सिग्नल आता है और वो सिग्नल को पशु ये कैच कर लेते हैं, जब वो कैच कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। अभी आवश्यकता है कि बाहर के साथ साथ जैसे हम अपने उस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं कि सुनामी जनरेट हो, हमें तुरंत पता चल जाए, अर्थक्वेक आता है एक सेकंड पहले तक भी हम नहीं कह सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। उस एक्सटर्नल सिस्टम को स्ट्रांग करने के साथ साथ हम ये भी करेंगे ना, वी कैन सेफली लिव अवर लाइफ फुली विद डिग्निटी एंड ऑनर। डिजास्टर आएगी, हम उसको फेस ऐसा कर सकेंगे कि कम से कम हमारी कैजुअलिटी, ऑफ कोर्स फिजिकल सेंस में तो ये हुआ है, आज डेवलप्ड नेशंस में कोई डिजास्टर होती है
जी।
तो वहां देखिए कि मटेरियल नुकसान पर तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन लॉसेस पर काफी हद तक कंट्रोल है, बिकॉज दे गेट द वार्निंग सिस्टम्स काफी स्ट्रांग है। सुनामी इंडोनेशिया में जनरेट हुई, उससे हमें तुरंत पता चल गया कि 1.5 घंटे के बाद ये सुनामी इंडियन कोस्ट को हिट करने वाली है
जी।
ये मिस्टर जायसवाल मिनिस्टर ने बोला, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। वी वर वेटिंग कि हाँ अब आने वाली है, लेकिन आई और डिजास्टर करके चली गई।
जी आपने बताया कि कैसे हमें स्ट्रांग रहना है ऐसे टाइम पर भी, और कई बार हम देखते भी हैं कि जब डिजास्टर होते हैं तो कई लोग अपनी फैमिली से भी अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, या फिर अपने नियर एंड डियर वंस की डेथ भी हो जाती है, और जो भी कुछ उन्होंने अपना पूंजी लगाया था जीवन भर का वो सब खत्म हो जाती है, घर भी नहीं बचता है। तो ऐसे में अब मैं क्या करूं कि जो मैं इस तरह की बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन मेरे सामने आ चुकी है उसका मैं सामना करूं?
वाकई जो सिचुएशन आई एक्सेप्ट फेसिंग द सिचुएशन वी कांट डू एनीथिंग। हाँ, जब तक सिचुएशन नहीं आई है तब तक अगर हमें इस हमने अपने को स्ट्रांग कर, बिकॉज सिचुएशन आने पर हम अपने को स्ट्रांग नहीं कर सकते, पहले से हमें
पहले से ही करना पड़ेगा।
तैयारी ये पहले से होगी, हमारा बैंक बैलेंस अगर होता है तो हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारा इंटरनल बैंक बैलेंस ये है कि मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन इज वन ऑफ द मींस, मेडिटेशन है, योगा है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, क्योंकि ऐसे समय में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। जब देख रहे हैं हमारे नियर एंड डियर डेथ हो रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, सारा एवरीथिंग वी आर लूजिंग, नेचुरली स्ट्रेस डिप्रेशन ये सब होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हमने पहले से मेंटल स्ट्रांग और रिलैक्सेशन टेक्निक सीखी हुई होंगी, ऐसे समय में भरे बाहर की परिस्थिति ऐसी होगी वी कैन रिलैक्स अवर माइंड इफ वी नो द टेक्निक्स। अब फायर ब्रिगेड होती है, पूरे साल भर में शायद 8-10 दिन उसका यूज होता होगा, लेकिन वो 8-10 दिन में इतनी वाइटल होता है वो सारा नुकसान को कंपेंसेट कर देता है।
जी,
ये आवश्यक है। कोई कहे कि अरे पूरे 12 महीने में 365 दिन में अगर 40 दिन यूज हुई तो बाकी दिन तो यूजलेस खड़ी रही गाड़ी, वो बाकी दिन यूजलेस नहीं, उसकी मेंटेनेंस वो जरूरी है, अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो यूजफुल नहीं होगा उसको। ऐसे ही ये डिजास्टर जब आ ही रही है और हम जान रहे हैं कि ये नेचुरली ये बढ़ती जाएंगी, तो बेस्ट मींस तो एक ये है कि एक तो फिजिकल एस्पेक्ट कि वार्निंग सिस्टम हमारे मजबूत हों, उन सबको हम करें, लेकिन साथ साथ हमारे ये इंटरनल सिस्टम भी ना, इनको भी हम
स्ट्रांग बनाए, मतलब पहले से ही स्ट्रांग बनाना,
पहले से जिससे उस वक्त हम उसे यूटिलाइज कर सके। हमारा बैंक बैलेंस होगा इंटरनल एनर्जी का, उस वक्त हम विड्रॉ कर सकेंगे। उस दिन हम मेडिटेशन सीखने जाएंगे तो हम नहीं सीख सकते, उस दिन हम इनर एनर्जी कंजर्व करना चाहें तो नहीं कर सकते।
बिल्कुल,
इसीलिए पहले से अगर टेक्निक सीखी होंगी तो स्ट्रेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड,
क्योंकि अक्सर हम यही मिस्टेक करते हैं जब वो चीज आ जाती है तो हम या तो अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं तो भगवान को ही इल्जाम लगाने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे को विल पावर डेवलप करने की जरूरत है।
विल पावर भी डेवलप करने की जरूरत है, और थोड़ा इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस होती है ना तो हमने मानो अपने किसी नियर एंड डियर को लूज कर दिया, मृत्यु हो गई उसकी। लेकिन हमारी संस्कृति ये सिखाती है बहुत देश विश्व के धर्मों की कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है मानो, तो ये चीज हमें हेल्पफुल होती है। बाकी नो डाउट शरीर गया तो वो तो सब कुछ गया, लेकिन जब हम समझते हैं कि एक्चुअली वो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसकी फीलिंग को हम सटली महसूस करते हैं। तो शरीर तो चला गया, जला दिया, सब कर दिया संस्कार, लेकिन उसकी सटल प्रेजेंस, उसका यादें, उसकी वो चीज हमें एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का कारण बन जाती है। लेकिन उसको लेना आना चाहिए, एंड दैट कम्स बाय मेडिटेशन, कि मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे सुप्रीम से भी एनर्जी लेते हैं और हम अपना कम्युनिकेशन किसी के साथ स्थापन कर सकते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन, वेदर दैट पर्सन इज हेयर और गॉन, वी कैन हैव कम्युनिकेशन।
लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों में बहुत उलझ जाते हैं। हम कोई भी घर में भी बात आ गई, घर में भी डिजास्टर हो सकती है, तो छोटी छोटी बातों में हम इतना उलझ जाते हैं, अपना इतना हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो हम बड़ी बातों को कैसे हैंडल कर पाएंगे? आपने जैसे बताया कि इंटरनली मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, मेडिटेशन टेक्निक सीखने की जरूरत है, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या इंटरनल सपोर्ट सिस्टम की जैसे हमने बात की उसमें कौन सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अदर देन विल पावर, मेडिटेशन के अलावा ऐसी और कौन सी बातें आवश्यक हैं जिसकी वजह से ऐसे कुछ भी आपदाएं मेरे जीवन में अगर आए तो मैं उनका मुकाबला कर सकूं?
एक तो ह्यूमन नेचर ये होती है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसका ब्लेम हम दूसरे पर रखते हैं, अपने पर नहीं। है ना, एक ह्यूमन नेचर है। तो इसको देखने की बड़ी जरूरत है, मुझे एक غالب کا شعر یاد آ رہا ہے اس میں ہے شعر کہ زندگی بھر غالب, زندگی بھر غالب ایک ہی بھول کرتے رہے, دھول چہرے پر تھی آئینہ صاف کرتے رہے.
بالکل آج کل یہی کرتے ہیں.
ہاں تو ایکچولی پرابلم از ود اس, لیکن ہم اس کا بلیم دوسرے پر رکھ دیتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کوئی بھی پرابلم اگر ہوتی ہے تو وہ پرابلم کا کہیں نہ کہیں کارن میں ہوں, کیونکہ پرابلم ایک ہی پرابلم چار آدمیوں کے سامنے آئی لیکن چاروں کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے وہ ہم پر نربھر کرتا ہے, پرابلم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو بھی ایکشن ہے کہیں سے بھی آ رہا ہے دیٹ از ناٹ ان آور ہینڈ, بٹ ریئیکشن از ان آور ہینڈ. ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ریئیکشن کیسا ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ایک تو یہ بات پر ہم دھیان دیں کہ ہمیں امیجیٹلی ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیکھ کے سوچ کر کے اینڈ دین ریئیکٹ. ایک تو یہ ہے, اس میں کیا سوچنے کا منشیا کو کافی مارجن مل جاتا ہے. اگر کرنے کے بعد منشیا سوچتا ہے تو فلاسفیکلی کہتے ہیں کہ جس وہ پشچاتاپ کا سوروپ ہوتا ہے. موسٹ آف دا کرائمس جو ہیں, چاہے نربھیا کانڈ ہو, چاہے دوسرے جیلز میں ہم لوگوں جیلز میں جانے کا بھی وہاں ایجوکیشن دینے کا موقع ملتا ہے, اتنے بڑے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی جیل میں ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بہت بڑھیا ان کا ریکارڈ ہوتا ہے بٹ ہیٹ آف دا مومنٹ میں انہوں نے ایک کرائم کر دیا اور جس کی سزا زندگی بھربھوت. تو وہ آوشیکتا ایک تو یہ کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں نا کیسے ہم اپنے کو, اور اس کے لیے سب سے بڑھیا یہی ہے کہ جب بھی کوئی اگر بات آئے ایسے اس وقت ڈونٹ ٹیک ایکشن, جسٹ ویٹ رہو. ایک تو یہ بات ہے ہم یہ کرتے ہیں. دوسری بات ہمارے انڈین سسٹم میں بھی یہ ہے کہ ہم بچے کا کچھ مطلب ایجوکیشن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بلیم بچپن سے دوسرے پر کرتا ہے.
جی
چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا کہ ماتا کیا کرتی ہے, بچہ ذرا تھوڑا کھڑا ہونا سیکھا خوش ہوتے ہیں پیرنٹ, تھوڑا ایک قدم بڑھایا خوش ہوتے ہیں, گر گیا تھوڑا ارے ارے مت دیتے ہیں کھڑا ہو کے چلتا ہے. سپوز ایسے کر رہا ہے وہ, کبھی بائی چانس تھوڑا تیزی سے گر گیا دیوار سے ٹکرا گیا
تو دیوار کو پیٹیں گے.
ہاں دیوار کو پیٹیں گے. بچے کو ہم نے یہ ٹیون کر دیا, اس کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا کہ یو آر نیور رانگ, یہ دیوار غلط ہے, ارے دیوار تو اپنی جگہ ہی کھڑی ہے. تو بچپن سے جو اس کو سگنل دے دیا وہ لائف لانگ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو آج آوشیکتا یہ ہے کہ نہیں, آئی ایم ریسپانسبل فار مائی آل دا ایلز اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ بلیم گیم جو ہے نا, اس سے اگر ہم کافی حد تک بچ جاتے ہیں تو, اور اسی کو اسپرچل بھاشا میں کئی بار ہمارا اس سنستھا میں کہتے ہیں کہ ہماری دور کی درشٹی پاورفل ہے اور پاس کی درشٹی کمزور
ہے.
جیسے چشمہ ہوتا ہے نا,
جی
تو چشمے میں پاس کا اور دور کا ہوتا ہے, تو ہمیں دوسرے کی کمی کمزوریاں وہ سب دکھ جاتی ہیں اپنی نہیں. اسی لیے ہم میڈیٹیشن ٹیکنیک میں گو انسائٹ, جب ہم اندر جاتے ہیں اپنے تو ہمیں اپنی کمی بھی پتہ چلتی ہے, پھر اس کو بھرنے کا پریتن, کمی کو نکالنے کا پریتن کرتے ہیں. تو ایک آوشیکتا یہ ہے. اور دوسری جو میں نے بتائی وسودھیو کٹمبکم کی بات جو ہے نا, تو اس وسودھا میں یہ پشو پرکرتی اور یہ سب چیز آ گئے, تو سب کے پرتی جیسی ہماری فیلنگ اور وہ ہوگی ویسا ہی ہمارا ویوہار ہوگا. اور منشیہ جیسا سوچتا ہے ویسا اس کی وانی میں بھی آتا ہے, ویسا پھر کرم میں آتا ہے. لیکن ہم کرموں کی طرف تو دھیان دیتے ہیں, من کی طرف دھیان نہیں دیتے. اس لیے ہماری بھارتیہ سنسکرتی میں ایک بہت اچھی بات کہی گئی ہے, ساری چیز من کو, کہ من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جی. تو اگر ہم یہ انٹرنلی من کو اگر ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کرنا سیکھ لیا, اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ, بہت آسان ہے, من بچے کی طرح ہے بس. لیکن ہم من کا دمن کرتے ہیں نا, کیوں آ رہا ہے سنکلپ, یہ نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, وہ زیادہ آتا ہے.
جی
من کو ہم بس ڈائیورژن دیتے ہیں. واٹ از ریکوائرڈ, من کا کام ہی ہے سوچنا. اب جیسے شواس پرکریا ہے اپنے آپ چل رہی ہے بنا نالج, پلک جھپک رہے ہیں اپنے آپ,
اپنے آپ ہی ہو رہا ہے
سب کچھ, ناڑی اپنے آپ چل رہی ہے. ایسی من کا کام بھی ہے سوچنا,
نیچرل ایکشن.
ہاں اس کو ہم روک نہیں سکتے لیکن اس کی ڈائریکشن آف تھنکنگ بدل سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی سی آپ نے ڈائریکشن بدل دی نا, بس بچہ چھوٹا ہوتا ہے مانو کھیل رہا ہے, چاقو سے کھیل رہا ہے. ہم جانتے ہیں چاقو سے کھیلے گا کٹ جائے گا, نقصان ہو جائے گا. تو آپ نے خالی کھیل کھلونا لے لیا چاقو, رونے لگے گا. لیکن آپ نے چاقو لے کے دوسرا کھلونا دے دیا, کھیلنے لگے گا. ایسے ہم کیا کرتے ہیں, ہم نگیٹولی اپروچ کرتے ہیں, نہ ان کو یہ نہیں آئے, یہ کیوں آ رہا ہے, کروت کیوں آ رہا ہے, نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے وہ. لیکن ہم سبسٹیٹیوٹ اس کو نہیں
دیتے ہیں.
آوشیکتا یہ کہ یہ ہم نہ کریں, घर में अंधेरा रात हुई तो हम अंधेरे को नहीं निकालते,
स्विच
ऑन कर दिया, प्रकाश आया, रात चला गया। ऐसे ही हम उसको बस खिलौना एक्सचेंज कर दें, अपने आप ही ये खत्म हो जाए। तो मन का भी यही है कि हम इसको स्ट्रेंथन कर देंगे तो बाहर का भी डिसास्टर और हमारा फैमिली डिसास्टर। आवश्यकता यही है कि अगर हम थोड़ा सा दूसरे को रिस्पेक्ट, रिगार्ड, दूसरे की बात को सुन लेते हैं, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। लेकिन अक्सर आप देखिए जहां भी टेंशन होता है दोनों चिक चिक के अपनी बात बोलते
हैं, कोई राइट साबित करते हैं,
राइट। तो इस कारण से जब सुनना ही नहीं चाहते तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहां होगा।
आपने कहा भी था हार मान ली,
हार मान ली
जी बिल्कुल। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है इतनी बेहतरीन हुई है, बहुत इतनी अच्छी रही कि आपने उन एस्पेक्ट्स को टच किया, उन गहराइयों को टच किया जो शायद हम कभी जानते भी नहीं थे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतनी डेप्थ में बताया हमको कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा जुड़ा हुआ है इसमें, जो डिजास्टर है, और क्या कोरिलेशन है नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में। तो इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से हम कोई ना कोई टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।
We are the wings of Brahma.